पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, मैं शिल्पा मूल्यों की यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज दुनिया में कोई इंसान संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, और अगर परफेक्ट नहीं है तो उससे भूल चूक होना तो संभव है। और ऐसे में अपनी भूल को मान लेना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसे भुला देना। और इसके लिए हमारे जीवन में जिस नैतिक मूल्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है फॉरगिवनेस, क्षमावान बनना। तो चलिए आज इसी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं बीके हंसाबेन। बीके हंसाबेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
ओम शांति।
दर्शकों, मैं हंसा जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। हंसा जी कैलिफोर्निया यूएसए से हैं और आध्यात्मिक संस्था से 40 वर्षों से जुड़ी हुई है, अपनी सेवाएं दे रही है। और वहाँ पर इन्होंने कई टीवी शोज भी किए हैं, आध्यात्मिकता से रिलेटेड रेडियो शोज में भी अपनी सेवाएं दी है। और वहाँ पर अलग अलग चर्चेज में जाकर भी अपने इंडियन कल्चर और मेडिटेशन सिखाने में भी अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। तो हंसा जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है।
ओम शांति। मुझे भी आज बहुत आनंद है यहाँ हाजिर रहने का।
जी जी, थैंक यू। हंसा जी, जो हम टॉपिक आज चर्चा करेंगे, जिस पर सबसे पहले ये बताइए कि फॉरगिवनेस, क्षमा जो है, ये मानवता के इतिहास में कब से इसने जन्म लिया है?
ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन एक ईश्वर की सौगात है
जी।
और एक मनुष्य के पास कई प्रकार की अनमोल शक्तियां हैं। अब क्या है कि इस संसार नाटक में हम मनुष्य आत्माएं अलग अलग पार्ट बजाती हैं और अलग अलग दृश्य देखती हैं। तो वास्तव में मनुष्य के जीवन की शुरुआत और यह संसार के इतिहास की शुरुआत, जो आज बहुत सारे लोगों को कई बार मालूम है, कई बार नहीं भी मालूम है, तो हम कहते हैं वो दुनिया थी सतयुग और त्रेतायुग की दुनिया, कि जहां पर हरेक की एक दूसरे के प्रति की एप्रिशिएशन की फीलिंग थी, एक्सेप्टेंस की फीलिंग थी, एक दूसरे को हम जो है जैसे हैं स्वीकार करके बड़े प्यार से जीवन जीते थे। बाघ और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे
जी।
लेकिन इस संसार नाटक में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि जब मनुष्य की आंतरिक शक्तियों में थोड़ी सी कमी होने लगती है
जी।
तो वो समय जब आता है जिसको हम कहते हैं द्वापर युग की शुरुआत, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी हम पढ़ते हैं, तो उसमें बताते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे के प्रति की भावनाओं का धीरे धीरे जिसको कहे कि
कमी आने लगती है,
रिस्पेक्ट कम होने लगता है। और साथ साथ मनुष्य के अंदर की शक्ति कम होने के कारण उसको छोटी छोटी बातों में दुख महसूस होने लगता है। छोटी छोटी बातों में, आपस में एक दूसरे के प्रति के व्यवहार में गलत फहमी शुरू हो जाती है। जैसे भी आपने मुझे कुछ कहा, आपके दिल में तो ऐसी भावना नहीं होगी, लेकिन मैंने उसको उस ढंग से समझ लिया क्योंकि उस दिन मेरा मन ऐसे ही अशांत और परेशान था। तो क्या होगा कि मैं नाराज हो जाऊंगी या मुझे लगेगा कि देखो आपने मेरा सम्मान नहीं किया, तो दुख होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये दुख की भावना, जिसको हम कहते हैं कि फीलिंग ऑफ हर्ट्स, वो बढ़ती जाती है, तो
कमजोर होते गए,
उसमें और भी हम कमजोर होते जाते हैं।
तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस क्या है?
बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है, महात्मा गांधी जी को एक बार किसी ने पूछा कि क्षमा देना वो क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारा संस्कृत का एक शब्द बताया, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा देना वो वीर का एक अलंकार है, श्रृंगार है, भूषण है। तो कहने का तात्पर्य कि जब आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति होती है तो वो सामने वाली व्यक्ति के कोई भी प्रकार के व्यवहार से दुख न लेकर के वो उसको पॉजिटिव देखती है। और या तो सचमुच ही किसी ने कोई कारण सर गलत फीलिंग से भी गलत व्यवहार किया भी है तो वो उसको क्षमा दे सकते हैं।
लेकिन हंसा जी, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं जैसा वातावरण है, और अभी आपने कहा कि अंदर से इंसान कमजोर हो गया है, तो हम कैसे फिर क्षमा कर सकते हैं? क्षमाशील हम कैसे बने, अपनी वृत्ति में हम कैसे लाएं? क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बात में तुरंत हर्ट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और आजकल तो फैशन हो गया है गलती करो माफी मांगो, आई एम सॉरी कह देते हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम नहीं दे पाते हैं।
मनुष्य के लिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, यू नो, नो मैन इज एन आइलैंड, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, और जब दो व्यक्ति साथ में रहेंगे तो उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपसी समझ, दूसरा म्यूचुअल लव, आपस का प्यार, और तीसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब आपसी विश्वास
जी।
तो आपसी समझ, आपसी प्यार और आपसी विश्वास
जी।
जब ये तीन चीजें होती है तो व्यक्ति के संबंधों में स्मूथनेस रहती है, इजीनेस रहती है, जिसको हम कहें सरलता और सहजता रहती है
जी।
लेकिन जब ये बातें नहीं होती हैं तो उसका स्थान अपेक्षाएं ले लेती है, एक्सपेक्टेशंस। तो जब हमारे एक्सपेक्टेशंस का लेवल परसेंटेज ऊंचा चला जाता है तो हमारे दुख और परेशानी के परसेंटेज को भी वो बढ़ा देता है। जैसे हमने किसी से अपेक्षा रखी कि ये व्यक्ति मुझे इतना रिस्पेक्ट देगा, अगर उसने थोड़ा कम दिया कोई कारण सर तो क्या होता है कि हमें दुख लग जाता है। या तो हमको होता है भी देखो इस व्यक्ति को हमने इतना मदद किया लेकिन इस व्यक्ति ने तो हमारी कोई कीमत ही नहीं किया, तो हमको दुख हो जाता है। या तो हम कोई व्यक्ति के लिए सचमुच ही अच्छा कुछ करने गए लेकिन उसने उसको उस ढंग से स्वीकार नहीं किया, तभी भी हमें दुख हो जाता है। तो आजकल ये बात भी है कि व्यक्ति जानबूझ के गलत करता है या झूठ बोल देता है या आपको तकलीफ हो ऐसा व्यवहार कर देता है और फिर सॉरी कह देता है, है? तो कई बार हम हंसी में कहते हैं कि भी आपने किसी को चाकू लगा दिया और फिर ऊपर में मलम लगा दिया, लेकिन जो अंदर का दर्द है वो तो रहता है। कई बार ये भी कहते हैं कि भाई चाकू का दर्द तो दवाई से खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल पर जो दर्द हो गया वो कैसे हीलिंग होगा। तो क्षमा एक ऐसा हीलिंग ऑइंटमेंट है, अर्थात कि वो एक ऐसा मरम का काम करता है कि जो व्यक्ति ने या तो गलत फहमी से या जानबूझ करके जो भी व्यवहार में किया है जिससे संबंधों में ब्रेक हो गया है, क्योंकि कोई भी चीज जब ब्रेक हो जाती है, जिसके लिए कहते भी कांच है वो जब टूट जाता है तो उसको साथ करने में टाइम लग जाता है, और अगर उसमें थोड़ी सी ब्रेक दरार नजर आती है तो क्षमा है वो ग्लू का काम करती है कि संबंधों को फिर से मरम्मत करके अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ लगाती है।
लेकिन हंसा जी, नेगेटिव प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हम भूल नहीं पाते हैं। एक कहावत भी है ना, फॉरगिविंग इज द वे टू फॉरगेटिंग, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं, तो क्या यही रीजन है जो हम माफ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते?
एक्चुअली एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो भूल नहीं कर सकता है
जी।
तो हमें ये भी एक सोचना है कि अगर मैं कभी भूल करूं और मैं चाहती हूं कि कोई मुझे माफ करे, समझे भी मनुष्य मात्र भूलने पात्र, जैसे हमारे गुजराती में कहा जाता है कि मनुष्य है तो भूल हो जाती है, भगवान से भूल नहीं होती है। लेकिन एक बात ये भी है कि हम ये देखते हैं कि मनुष्य का जीवन चार पहलुओं से बना हुआ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो जब हम ये चारों बातों का बैलेंस रखने का सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक कार के रूप में, जैसे कार चार पहियों अगर ठीक होंगे तभी वो अच्छी तरह से स्मूथली चल सकती है, ऐसे जीवन को भी हमें अगर अच्छी तरह से चलाना है तो ये चारों बातों को हमें बैलेंस में लाना सीखना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास फिजिकली सब कुछ होता है फिर भी वो छोटी छोटी बात को उस ढंग से लेते हैं, क्योंकि कहते भी हमारा मन सेंसिटिव है, लेकिन फिर मन को मजबूत बनाना है ना। तो क्षमा और भूलना और व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव भाव रखना, ये है एक हमारी चॉइस मैं अपने जीवन को कैसा बनाना चाहती हूँ। जैसे हम कई बार ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जीवन जैसे कि एक बगीचा है, तो मेरे बगीचे के अंदर मैं कैसे कैसे फूल जिसको कहे कि ग्रो करना चाहती हूँ, है ना। तो कई लोग हैं कांटे ग्रो करते हैं, कई लोग हैं फूल ग्रो करते हैं, है ना। तो हमें ये सोचना है कि देखो गुलाब के पुष्प के साथ भी कांटा होता है, कमल के लिए भी कहा जाता है वो कीचड़ के बीच में पैदा होता है। ऐसे हर प्रकार की अच्छाइयां जो कोई भी प्रकार की बुराइयों के बीच में भी जागृत हो सकती है,
लेकिन हमारी चॉइस,
ये हमारी चॉइस है
जैसा आपने कहा। हाँ जी बिल्कुल सही,
बिल्कुल। तो क्या है कि मुझे ये सोचना है कि मैं अपने जीवन को क्या बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाना चाहती हूँ। तो अगर हम ये सोचे कि भाई मनुष्य फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चारों बातों को साथ में लेके चलता है
जी।
तो क्या होगा कि उसको वो देखने का नया तरीका मिलता है कि भी माफ करने से मुझे क्या क्या फायदा है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी काम तभी करता है जब उसको कोई उसमें फायदा या लाभ नजर आता है। तो आजकल साइंस में भी इस बात की रिसर्च हो रही है कि जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है और जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, जब व्यक्ति अवगुणों की बातों को महत्व देता है, जब व्यक्ति गुणों को महत्व देता है, तब उसकी सारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सिस्टम है उसका कनेक्शन होता है,
उसमें चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं,
हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, केमिकल्स भी चेंज होते हैं। तो क्या है कि हमारे ब्रेन से लेकर के बॉडी की सारी सिस्टम को देखो, आजकल लोग काफी अपने स्वास्थ्य के लिए जागृत हो रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि क्षमा एक स्वास्थ्य की जागृति के लिए भी बहुत जरूरी है, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, और हमारी अंदर की भावनाओं को जागृत करने में भी बहुत मदद करती
है। पावरफुल,
इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी पावरफुल टॉनिक। यस, क्योंकि क्या है कि जो हम सोचते हैं और जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, जैसे कहते भी शरीर के लिए अच्छा भोजन खाना चाहिए, जैसे आजकल कैलिफोर्निया में तो सबको बहुत स्वास्थ्य की जागृति है, तो कहते ऑर्गेनिक खाना खाओ कि जिसमें कोई भी प्रकार के केमिकल्स ना हो। तो जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन के लिए हैं वो जैसे कि गलत प्रकार के केमिकल्स हैं, जब अच्छे गुण हैं और विशेष करके जो क्षमा भाव का गुण है वो हमारे ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी के लिए कि जैसे एक अच्छा सा ऑर्गेनिक टॉनिक का या एक एनर्जी का, शक्ति का काम करता है।
हंसा जी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन क्षमाशील बनने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी अंदर भर जाती है और हम इतने सेंसिटिव है मन से, भावनाओं से, दिल से, तो क्या क्या बाधाएं आ सकती है अगर मुझे क्षमाशील बनना है, क्योंकि मुझे क्षमा चाहिए तो मुझे भी क्षमाशील बनना पड़ेगा, तो इसके क्या बाधाएं आ सकती है इसमें।
मैं है ना इसके बारे में आप एक बहुत अच्छी सत्य घटना सुनाना चाहूंगी
जी।
हवाई में अभी भी कोई व्यक्ति अगर गूगल करेंगे तो उनको और भी डिटेल मालूम पड़ेगा उसके बारे के, यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल है। डॉक्टर ह्यू लेन ने, जो कि बहुत बड़े थेरापिस्ट थे, उन्होंने ये क्षमा भाव के बारे में काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था।
अच्छा।
तो बताते हैं कि हवाई में एक ऐसा प्रिजन था कि जहाँ पर जो क्रिमिनल्स थे वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थे।
अच्छा।
जो जल्दी से किसी की थेरापिस्ट की बात नहीं मानते थे, कि विदेश में क्या होता है कि प्रिजन्स में थेरापिस्ट होते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको कई बातों से समझाते हैं, मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि उनका भविष्य अच्छा बन जाए। तो क्या होता था कि इस प्रिजन में जो भी थेरापिस्ट जाते थे तो प्रिजनर्स कोऑपरेट नहीं करते थे, तो फिर वो थेरापिस्ट रह नहीं सकते थे। तो फाइनली डॉक्टर ह्यू लेन ने सोचा कि चलो जॉब के लिए स्वीकार किया, क्योंकि कोई थेरापिस्ट जॉब के लिए जाते भी नहीं थे। एनीवे, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या हुआ कि उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि मैं इन लोगों को थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मदद करने का तरीका अलग होगा।
जी।
तो मैनेजमेंट ने कहा क्या होगा, तो कहा मैं इन लोगों को फिजिकल नहीं मिलूंगा। तो कहा आप क्या करेंगे, कैसे थेरापी करेंगे? तो कहते मैं अपने ऑफिस में बैठ के उनकी केस फाइल है वो स्टडी करूंगा। तो कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप ऐसे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू डू दिस एन एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बाद बताऊंगा, आप मुझे इतनी परमिशन दो। तो वो डॉक्टर क्या करते थे कि अपनी ऑफिस में बैठ करके एक एक केस फाइल को लेकर के उसके सामने देख करके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो संकल्प करते थे कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और भगवान का तुम्हें आशीर्वाद मिले,
वाइब्रेशंस,
और उनको वाइब्रेशंस देते थे। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि संसार में जो कुछ भी होता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हम दोनों बातों के लिए इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली जिम्मेवार हैं।
बिल्कुल सही,
बराबर ना? जैसे आज कोई व्यक्ति बहुत अच्छी इन्वेंशन करता है तो उससे भी पूरे समाज को फायदा होता है, और अगर कोई व्यक्ति गलत हो जाता है तो वो भी कोई ना कोई रीति से सारा समाज जिम्मेवार है। तो उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि आज एक व्यक्ति क्रिमिनल बना है तो उसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ, तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। अब वो क्रिमिनल बना है, उसके पास जाकर के मैं माफी मांगू, वो तो वो समझने के लिए रेडी नहीं है मेंटली एंड इमोशनली, तो मैं उसको उसके वाइब्रेशन भेजूंगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पहलू की बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार की वो मेडिटेटिव स्टेज में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो ऑफिस में बैठ करके वो फाइल को अपने हाथ में लेकर के बहुत दिल से भगवान को प्रार्थना करते थे, और उस व्यक्ति, वो व्यक्ति से जिसका केस फाइल था उससे क्षमा मांगते थे कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, और भगवान की आपके पर आशीर्वाद कृपा रहे ताकि आपका मन और जीवन अच्छी बातों से भरपूर हो। और वो उतने टाइम पर वो एक्सपेरिमेंट करते थे, वाइब्रेशन देते थे, जब तक उनको फील होता था कि उस व्यक्ति को वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं,
जरूर होते होंगे।
हाँ, तो उसके बाद क्या होने लगा इंटरेस्टिंगली कि धीरे 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 वो सारे क्रिमिनल्स के दिल दिमाग पर उसका असर होने लगा। तो क्या है कि देखो, संसार में हम किसी के भी साथ रहते हैं, चाहे माँ बाप, पति, बच्चे, बहन भाई और कोई भी संबंध है, अब हम सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, सबसे आनंद पाना चाहते हैं, तो हमें ये करना होगा कि हमें बड़ा दिल रखना
लेकिन
होगा।
हंसा जी, हम बाहर की दुनिया के भी कॉन्टेक्ट में आते हैं, आपने कहा बड़ा दिल होना चाहिए, क्षमावान बनना चाहिए, लेकिन क्षमा करने का क्या ये अर्थ है कि हम फिर से धोखा खाने के लिए तैयार हो जाए या लोगों को फायदा उठाने दे, क्योंकि ये भी होता है
जी,
अगर हम माफ करते हैं बार बार किसी को
जी,
तो ये भी हो सकता है
जी,
तो इसका क्या ये अर्थ है?
क्षमा एक ऊंची प्रकार की क्वालिटी है, एक अच्छा गुण है। तो कहा जाता है कर्मों की गति के प्रमाण गोज अराउंड कम्स अराउंड, जब मैं किसी को कुछ अच्छाई देती हूँ तो आज नहीं तो कल वो अच्छाई मेरे पास आएगी। जैसे कहते हैं कि अगर आपने मीठा बीज डाला है तो मीठा फल ही मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्षमा और सब प्रकार के जो गुण हैं वो एक पैकेज में होते हैं। तो देखो, आज कभी मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, अब मैंने क्षमा किया, लेकिन हम एक बात सीखते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी फिलोसॉफी में कि क्षमा के साथ साथ हमें ज्ञान युक्त क्षमा करना है। तो आज किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, मैं बड़ा दिल रख करके उसको क्षमा कर दूं, फिर मैं शांति से सोचूं कि हो सकता है उस व्यक्ति का मेरे साथ गलत व्यवहार करने का लक्ष्य न भी हो या एक बुरा इंटेंशन न भी हो, लेकिन कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो या कुछ भी हो गया हो, तो हम एक दो दिन के बाद समय निकाल करके उस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई देखो, आपने मेरे साथ ऐसा किया, अगर आपने भूल से किया है तो मैं क्षमा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जो किया है यो योग्य नहीं है। और ऐसा करने से हम अपने संबंध की जो आपसी हार्मनी है या लविंग फीलिंग है, प्यार की भावना है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो अब हम दोनों को मिलकर के सोचना है कि हमें कैसा, किस क्वालिटी का संबंध रखना है। तो अगर हम एक बार समझ लेते कि हमें इस क्वालिटी का संबंध रखना है और इस संबंध को हम इस ढंग से निभाएंगे, तो क्या होगा कि एक दूसरे की समझ, जैसे मैंने आगे भी कहा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो हम कई बार समझाते हैं लोगों को कि क्या है कि कोई भी प्रकार के संबंध जिसके भी साथ आप रखते हैं, शांति से बैठ करके वो संबंध की एक रूपरेखा बनाओ
जी।
कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसीलिए भी व्यक्ति को सेंसिटिविटी आ जाती है और कहते हैं कि भाई देखो मैंने तो इतनी आपसे अपेक्षा रखी थी, आपने क्या किया, मेरे को तो धोखा हो गया। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति सचमुच इतनी अपेक्षा के लिए रेडी था?
बिल्कुल
बराबर ना। तो अगर सामने वाला व्यक्ति रेडी नहीं था तो मुझे धोखा नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैंने मान लिया था कि शायद मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ।
मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल उस तरह का हो,
हाँ,
उस लेवल पे हो कि हम ये भी समझ पाए
जी। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है कि जितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा उतना म्यूचुअल लव होगा। जैसे कई बार कई माँ बाप कहते हैं कि मैंने तो सारी जिंदगी अपने बेटे को इतना वो किया इतना वो किया, अभी बड़ा होकर के वो हमारे सामने भी नहीं देखते, हमको बहुत दुख हो गया। लेकिन बेटा कहता है कि देखो आपने मेरे में जो अपेक्षाएं रखी, लेकिन उसके बाद मेरी भी कोई इच्छाएं थी, तो आपने वो भी समझना था। तो कई बार क्या होता है कि हम, या कई बार बच्चे कहते कि हमने अपने माँ बाप के लिए इतना किया और माँ बाप ने नहीं किया, हा? या तो और कोई भी संबंध में, चाहे पति पत्नी के संबंध में या चाहे भाई बहन के संबंध में भी। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति को अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखना है। और दूसरा, जब हम आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी मन के अंदर और व्यवहार में भी प्रैक्टिकली रूपरेखा बनानी है कि आप हमारे लिए इतना करेंगे, हम आपके लिए इतना करेंगे
जी।
दूसरी बात है कि जैसे समझो, ये मैंने माँ बाप का एग्जाम्पल दिया, तो माँ बाप के दिल में शुरू से ये होना चाहिए
जी
कि मैं अपने बच्चे को अपनी इच्छा से इस रीति से आगे बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में वो जो भी प्रकार का जीवन पसंद करे, जो भी उसकी चॉइस हो, उसको भी मैं रिस्पेक्ट दूंगी,
उतना उसको भी स्पेस देना चाहिए,
उसको स्पेस दूंगी बजाय कि मैं उसका दुख उठाऊंगी। तो जब कोई भी कर्म अच्छा होता है उसके पीछे अगर अपेक्षाओं का लोड होता है
और हर्ट हो जाते हैं, फिर माफ नहीं करते।
एग्जैक्टली राइट। लेकिन हम शुरू से ही ये रखे कि भाई मुझे अपने स्वमान में रह के काम करना है, और जो काम मैं कर रही हूँ, मैं जो किसी को कुछ दे रही हूँ, तो वे मैं अपनी उदारता से दे रही हूँ, एक गिफ्ट के रूप में दे रही हूँ, एक फर्ज के रूप में कर रही हूँ, एक कर्तव्य के रूप में कर रही हूँ, जिससे मेरे जीवन में मुझे आनंद और सुख मिलता है। क्योंकि हर कर्म मुझे सुख और आनंद मिलता है, तो फिर हमें क्षमा करना सहज हो जाएगा।
तो आध्यात्मिकता से जिस तरह आप जुड़ी हुई है, तो आपने आध्यात्मिकता से अपने अंदर ये गुण कैसे विकसित किया, आप क्षमाशील कैसे बने, हम जानना चाहेंगे आपका कोई अनुभव आप शेयर करें संक्षेप में।
ऐसा होता है कि देखो, जैसे अभी मैं भारत के बाहर सेवा पर हूँ, तो कई पश्चिमी भाई बहनों से मिलना जुलना होता है। तो जैसे मैंने यही कहा कि पश्चिम के देशों में एक दूसरे के प्रति की भावनाएं बहुत जल्दी से सूख जाती हैं। तो क्या है कि हम ये बात का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई बार जैसे भारतीय संस्कृति में तो एक कई ऐसे प्रकार के हमारे मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं। तो जैसे मैंने कहा, महात्मा गांधी ने, गौतम बुद्ध ने, और कई ऐसे हमारे पास ऐसे इतिहास में महान आत्माएं हैं कि जिन्होंने क्षमा की बात बताई है, लेकिन अमेरिका में विशेष करके ये बातें है नहीं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग कहते क्रिश्चियनिटी है, अमेरिका में भी क्रिश्चियनिटी है। क्राइस्ट ने कहा था कि ये आत्माएं मुझे जो कुछ भी कर रही है, भगवान उसको माफ करना, जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। तो कई चर्चिस में भी काफी क्षमा आदि की बातें बताते हैं, लेकिन ये जो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बातें हैं, वो उनको टाइम लगता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन से आती है, तो हम उनको धीरे धीरे मदद करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि कोई कोई आत्माएं हैं, कोई कोई भाई बहने थे कि जिनके कोई अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं थी, और हम सोचते हैं कि भी हम तो आध्यात्मिकता के द्वारा उनकी लाइफ को टोटल हेल्प करना चाहते हैं। तो एक दो बार उनको ऐसा लगा तो हमने मेडिटेशन किया कि परमात्मा इस आत्माओं को, दिल दिमाग को ऐसी हीलिंग दो, क्षमा की भावना दो
जी।
तो उन्होंने क्या व्यवहार किया है वो बात को हमने बाजू में रख दिया। तो क्षमा को तीन रीति से लेना है
जी।
कई बार क्या होता है कि जब हमने गलत काम कर लिया तो अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे माफ भी कर देता है लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते
जी।
कई बार हम दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा काम है ईश्वर से क्षमा की मदद लो। इसलिए भारतीय संस्कृति में ईश्वर को क्षमा का सागर कहा गया है। जैसे मंदिर में जाके हम आरती भी गाते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि भी आप क्षमावान हो। तो हम कहते हैं कि एक तो सबसे पहले मुझे अपने आप को क्षमा करना सीखना है कि कुछ भी किया मैंने, भगवान हमेशा मुझे दूसरा चांस देता है। जीवन की किताब में दूसरा एक नया पेज लिखने का मुझे हमेशा ही मौका मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को क्षमा करना है। तो जितना हम अपने आप को क्षमा करना सीखते हैं उतना हम अपने दिल दिमाग को खोलते हैं, और जब हम अपने को क्षमा करेंगे तो दूसरे को भी करना इजी हो जाएगा।
आपने बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से, अपने अनुभवों से और इतने सरल शब्दों से बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय पर प्रकाश डाला है, हमें प्रेरणा दी है, हमें गाइड किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति। जैसा कि आपने सुना, क्षमाशीलता ये अपने आप में बहुत ही बड़ा गुण है और मानवता का सबसे बड़ा गुण भी है और धर्म भी है। तो आज की चर्चा से मुझे आशा है कि आपने जरूर प्रेरणा ली होगी, आपका हौसला बढ़ा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को महानता के उच्च शिखर पर ले जाए, क्योंकि क्षमावान ही महान बन सकता है। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए, अगले अंक में हम नए मूल्य के साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। ही